बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिज़वी, प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है कि जहां भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बख़ैर व आफियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान में दहशत गर्दाना वाक़ियात। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे मौजूद मेहमानों से, तो मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता 16 दिसंबर को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशत गर्दों ने हमला करके जो क़यामत सग़रा बपा की थी, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हुई थी और आनन फानन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और फौजी अदालतों के क़याम के ताल्लुक़ से कानून भी पास हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया जाएगा। अगरचे कल पेशावर आर्मी स्कूल दोबारा खुल गया, लेकिन कल ही रात लोरालाई तहसील में दहशतगर्दों ने एफसी के चेक पोस्ट पर हमला करके मुतअद्दिद एफसी एहलकारों को हलाक कर दिया और मुतअद्दिद लोगों को अगवा करके दहशतगर्द अनासिर अपने साथ ले गए। लेकिन इससे भी एक और क़यामत खेज मंजर वो था जब गुज़श्ता जुमे की रात रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह पर, जहां पर लोग पैगम्बरे रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की इश्को मोहब्बत से सरसार उनके जश्न वलादत का जश्न मना रहे थे, तो दहशतगर्दों ने जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, उन्होंने हमला करके मुतअद्दिद मुसलमानों को शहीद कर दिया और बहुत से लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इसके अलावा कराची में भी टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, और 2 रोज़ क़ब्ल बल्कि 3 रोज़ क़ब्ल 2 शिया डॉक्टरों को दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त जब पूरा मुल्क दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुत्तहिद नजर आ रहा है, फौजी अदालतों का क़याम भी अमल में आ चुका है, तो दहशत गर्द अनासिर इस तरह के हमले करके हुकूमत, फौज और कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये और इस जैसे दीगर सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। मगर हमारे साथियों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तरतीब दी है, पहले उसे देखते हैं, फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में हाजिर होते हैं।
पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के वाकयात दोनों ही जारी हैं, जबकि मंगल के रोज पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ जेलों में सजाए मौत के 7 कैदियों को फांसी भी दी गई। इसके साथ ही पीर के रोज पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल भी दोबारा खुल गया और बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ मौजूद थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सिलसिले में इस मुल्क के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर सरगर्मी से अमल दरामद में पंजाब हुकूमत सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और JUI समेत तमाम सियासी पार्टियों ने नेशनल एक्शन प्लान की इत्तेफाक राय से मंजूरी दी थी, इसलिए मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए उस पर अमल दरामद की रफ्तार कमजोर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दरमियान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने भी इस मुल्क का दौरा किया है, जिसके बाद खबरें हैं कि अमरीका ने भी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के सिविल इदारों की इमदाद 2015 में भी जारी रखने का फैसला किया है। शाम और इराक समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दों के हिमायत के इल्ज़ाम का सामना कर रहे अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका दुश्मन हैं। दहशतगर्दी का मौसर अंदाज से मुकाबला करने और दीगर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक कौमी एक्शन प्लान वज किया है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि अपनी सरजमीन से तमाम दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। दरअसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अल्ताफ हुसैन ने कराची में सिक्योरिटी की सूरतेहाल पर अपने एक बयान में कहा है कि शहर में दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन कल अदम जमातें खुलेआम जब जहां चाहती हैं किसी को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बना लेती हैं। दरअसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग और दहशत गर्दाना हमलों का सिलसिला भी जारी है। हालिया दिनों में कराची में टारगेट किलिंग में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक दूसरे वाकये में दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक चेक पोस्ट पर हमला करके फ्रंटियर कोर के 7 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया, जबकि इससे कबल पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह के करीब होने वाले धमाके में 8 अफराद जान बहक اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان مرضیہ افغم نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بے گناہ افراد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتا ہے اور اسے دین اسلام کی تعلیمات اور انسانی اقدار کے منافی سمجھتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور اس پر مختلف بیانات کے درمیان دہشت گردی میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے سلسلے میں بھی بیانات سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع سمیت کئی اعلی عہدیداروں نے پاکستان میں دہشت گردی میں ہندوستان کے ملوث ہونے کی بات کہی ہے۔
ناظرین، چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہے پاکستان کی سینئر تفسیر نگار محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ۔ محترمہ، السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب پوری قوم متحد ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تعلق سے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو دہشت گردوں نے پچھلے جمعے کی رات کو راولپنڈی میں ایک امام بارگاہ پر ایک بار پھر حملہ کیا اور متعدد محبان رسول کو شہید کر دیا۔ دہشت گرد عناصر اس طرح کے حملے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایک مکمل طور پہ ایسی سطح پہ آ گئی ہے کہ اس کو ہم کھلی جنگ کا نام دے سکتے ہیں، اور جب کھلی جنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی طرح بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو خاتمہ ہو گیا ہے یا اس میں کسی طرح کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جس طرح آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی زیادہ کر دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے کہ یہ خدشات جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے، اور بہت زیادہ مختلف جگہ پہ تھریٹس کی باتیں بھی آ رہی تھی۔ تو یہ ایک اسی جنگ کا میں حصہ سمجھتی ہوں، لیکن یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ جس میں یہ اس طرح کا اظہار کیا جائے کہ وہ سیکٹ جو ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، یا اس طرح کا یہ ایک تاثر دیا جائے، کیونکہ جو پنڈی کا خاص طور پہ واقعہ ہوا جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں ایک امام بارگاہ میں ہوا، اور یقیناً وہ محفل میلاد تھی جو ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہمارے اگر دیکھا جائے ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ملک میں وہ اس طرح کی ایک محفل ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی شان میں ہم جو ہے وہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کا ایک واضح طور پہ یہ میسج دینے کا کہ غالباً یہاں کوئی سیکٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت جو جنگ ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں رہی کہ اس میں کوئی شیعہ مر رہا ہے، سنی مر رہا ہے، کون مر رہا ہے، لیکن اب یہ جنگ جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے اس لمحے پہ یا اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ جس میں مکمل طور پہ صرف انسان مر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ پوری قوم متحد ہے، دیکھیں میں یہاں ایک بات جو اس وقت فیل کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے جو دوسرے مفکرین ہیں اس میں اختلاف رکھتے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری ریاست نے ایک اپنی پہچان رکھی تھی، اور وہ پہچان یہ رکھی تھی کہ اس نے مذہب کی جو بنیاد ہے اس کو یا اس کی تبلیغ کہہ لیں کہ جیسے ریاست نے ذمہ داری لے لی تھی، اب ریاست کی جو ذمہ داری وہ تھی وہ دہشت گردوں نے اپنے سر پہ لے کے اس کو ایک استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب ریاست کے پاس اس وقت صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس نے اس ملک کے لوگوں کا دفاع کیا کرنا ہے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ریاست کے جو ایک پالیسی ہے اس میں بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے، اور وہ جو شفٹ ہے اس کو ہم یہ شاید نام دے رہے ہیں کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور ایک لائے عمل بنا رہی ہے، لیکن یہ جو شفٹ مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ وہ مجھے بڑے کی اس وقت صورت ایک ماہ نہیں ہوا جو ہمارا خیبر پختونخوا ایک اسکول میں جو بچوں انتشانہ جو ایک
جی۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے، ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ اسے دور کیا جائے۔ جیسا کہ محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کھلی جنگ ہے جو دہشت گردوں نے پوری پاکستان کے خلاف یعنی پوری قوم کے خلاف چھیڑ رکھی ہے، اس میں اب تخصیص نہیں رہی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک خاص فرقے کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور سنا کہ راولپنڈی میں محفل میلاد میں اور امام برگاہ پر حملہ کیا گیا جس میں شیعہ مسلمان جمع تھے، اور وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خراج عقیدت و تحسین پیش کر رہے تھے، اور اس محفل میں اپنے عشق اور محبت اور عقیدت کا حضور کی خدمت میں والہانہ اظہار کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد आप कराची में देखें कि टारगेट किलिंग के जो वाकयात हुए उसमें शिया डॉक्टरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, तो और जहां तक लोरालाई का ताल्लुक है तो जाहिर है कि इससे इनकार किसी को नहीं कि दहशतगर्द न तो किसी मजहब को पहचानते हैं, न किसी फिरके को पहचानते हैं, न किसी मसलक को, क्योंकि उनका खुद भी अपना कोई मजहब नहीं होता और न ही दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ा जा सकता है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर इस वक्त स्काइप के जरिए हमारे साथ रबते में हैं पाकिस्तान के मामलात के माहिर जनाब सीरत अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम
जी। सीरत अब्बास साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से कराची में वाक़ात पेश आया और रावलपिंडी का जो सानहा हुआ, उस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? चूंकि जो शिया तंजीमें हैं उन्होंने बाकायदा हुकूमत पर इसकी जिम्मेदारी आयद की है कि हुकूमत शिया मुसलमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नाकाम रही है।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे दावत दी कि हम अपना मौकिफ बयान कर सकें, और बड़े अफसोस से कहूँगा कि हमारा एक माइंड सेटअप बन चुका है कि जब तक के पाकिस्तान में अभी माजी में जिस तरह से सानिया पिशावर हुआ, इस तरह के इस नौयत के जब तक वाकया ना हो हमारी कौम बेदार नहीं होती। ये रोज का मामूल बन गया जिसमें 8 लोग या 10 लोग शहीद होते हैं और हम अपने डेली रूटीन में लगे रहते हैं, हमारे हमारे सरों पे जूं भी नहीं रहती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जिसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। हमें पता है कि जिस तरह से पाक आर्मी ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन कर रही है, ये एक बहुत ही मुस्बत इकदाम है, और मैं अपील करूंगा कि ये इसका दायरेकार पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में बैक वक्त किया जाए ताकि दुश्मन का कला कमा किया जा सके। दूसरी तरफ जो दहशत गर्दी को हवा देने वाली चीजें जिससे दहशत गर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, उसमें अहम जो चीज वो किरदार अदा कर रहे हैं वो मदारिस हैं जहां पे वो हेट्रेड के लिटरेचर पढ़ाए जा रहे हैं। माजी में जिस तरह से ये लिटरेचर मदारिस में पढ़ाए गए, दीगर किताबों में जिस तरह से एक मखसूस मकतब फिक्र को टारगेट किया गया, और आज ये दौर आ चुका है कि सोशल मीडिया तक ये चीजें आ गई हैं जहां पे एक मखसूस मकतब फिक्र के अकीदों को पामाल किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कौम में गम गुस्सा होगा, और इसी तरह जो जवान आजकल की नस्ल है जब वो ऐसी चीजें इंटरनेट पे देखेगी तो जाहिर सी बात है उनकी उनके जुनून है, मजहबी जुनूनियत है, वो इस तरह से सामने आएगी, जो एक सानिया पिंडी जो है उसकी एक सबसे बड़ा एक मिसाल है। हम लोग जिस इदारे पे काम कर रहे हैं, जो इदारा हम मलबन ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, उस इदारे का नाम शिया सेफ्टी है, और इस इदारे का मकसद पाकिस्तान में उन अफराद के हाथों को मजबूत करना है जो हसास मकामात की सिक्योरिटी पे मामूर हैं। हम माजी में भी ये बात कह चुके हैं, अभी भी ये कहते हैं कि सरासर जिम्मेदारी रियासत की होती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की होती है। एज अ सिविल सोसाइटी या एज अ सिटीजन हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे शरपसंद अनासर जो अफरा तफरी फैलाने का इरादा रखते हैं उनकी निशानदेही करें, कानून के हाथों को मजबूत करें, और फिर ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की उनकी इनकी जिम्मेदारी है, ये उनका उनका रोल है कि वो ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लेके आए ताकि उनका भी इंसाफ हो सके। हमारी कोशिशें अपनी अपनी तरफ से पूरी हैं, और हम पाकिस्तान में ऐसे आलात प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे इस पूरी कम्युनिटी का हम दिफा को यकीनी बना सकें। हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, पहले भी हम ये बात कह चुके हैं, अब आपके चैनल के तवज्जो से मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ऐसे रिलीफ ऐसे फंड्स पर ऐसे कायम करे जिसमें आवाम को एकोमोडेट किया जाए। जिस मुल्क में पानी महंगा और खून सस्ता हो जाए वहां की आवाम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। अब पानी चूंकि सर से ऊपर चला गया है और बात अब ऐसी आ गई है कि अब हमारे हाथों से बात निकल चुकी है, तो इसमें गवर्नमेंट को सीरियस एटीट्यूड के साथ आगे आना होगा, वो ऐसे मुस्बत इकदाम करें ताकि अवाम में उनके उनके लिए एक एतमाद कायम हो, ताकि अवामी नुमाइंदे सिविल सोसाइटी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुकूमत के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर चल सके ताकि इस दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सके। जी
सैयद अब्बास साहब, जैसा कि पाकिस्तान में बाज हलकों का कहना है और बाज शिया तंजीमों का भी कहना है कि हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी तरह से संजीदा नहीं है, तो क्या आप भी उनके इस नजरिए की हिमायत करते हैं, तायद और तस्दीक करते हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस बात पे दोहरी कोई राय नहीं है। आपको हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से एक मुल्क में, जिस तरह से मदारिस का, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जो मस्जिद जरार की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, वहां पे अगर कोई एक मुफ्ती अगर इस तरह से इश्तियाल अंगेज धमकी आमेज वीडियो रिलीज करे, क्या हुकूमत वक्त को नजर नहीं आ रहा? क्या वो इस पे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं? तो इनका इस तरह से एटीट्यूड और लैक ऑफ कंसर्न टुवर्ड्स कम्युनिटी ये शो कर रहा है कि इन लोगों ने खुद ढील दी हुई है। ऐसे अनासर जो मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर ओपन फोरम्स को इस तरह से अगर इस्तेमाल करें, वॉलेट करें, और जिससे अवामी और जो दीगर जो सियासी और मजहबी तंजीमें हैं, शिया तंजीमें हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स आते हैं, और हुकूमत की जिस तरह से जो हुकूमत का एटीट्यूड है, उससे हमें मेरे ख्याल के हमें ये फील होता है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी शहरियों के लिए कंसर्न है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिन मदारिस का जिक्र किया, वो मदारिस जिस जो मस्जिद जर्रार की आइडियोलॉजी पे कायम हैं, जो अपने लिटरेचर को हर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं मखसूस मकतब फिक्र की अकीदों को पामाल करने के लिए, और अब हद ये आ चुकी है कि ऐसे ऐसे सोशल साइट्स के ऊपर ऐसे ऐसे पेजेस हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पे मखसूस मकतब फिक्र के अकायद को भी हिट किया जा रहा है, और ना कि सिर्फ जवान, जो जवान देखते हैं, जो साहिब अकल हैं, साहिब शऊर हैं, जब वो इस चीज पे रिटेलिएट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एक इश्तियाल की चीज पैदा होती है, एक आर्ग्यूमेंट होता है जो आम सिटीजन्स के लिए भी खतरनाक है, और हुकूमत को इस पे मुस्बत इकदाम करना चाहिए। ऐसे मदारिस जहां से इस तरह से इश्तियाल अंगेज स्पीचेस आ रही हों, जहां से इस तरह के अकीदों को पामाल किया जा रहा हो, इन पे रोक टोक लगाई जाए, और ये किरदार हुकूमत का है, हुकूमत अपने सीरियस एटीट्यूड के साथ आगे आए ताकि जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं उनको सुकून हासिल हो सके।
बहुत
जी
शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में, आप राबते में रहिएगा। चलते हैं कराची, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर कालम निगार और सहाफी जनाब मसूद जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
मसूद जैदी साहब, सानहे पिंडी के बाद कराची में भी शिया डॉक्टरों को गोलियों का निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, क्या कहेंगे सूरत हाल पर? क्या दहशतगर्दी के ताल्लुक से जो हुकूमत ने अपने आज़म का इजहार किया है वो अभी तक अमली जामा पहनना शुरू नहीं हुआ?
जी, जो हुकूमत ने इजहार किया है वो तो जो फौज ने ज़रबे आज़म शुरू किया और उसके बाद में जो ये पेशावर का सानिया हुआ, उसके बाद एक दबाव की कैफियत में ये मजबूरी आई कि ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। लेकिन आप देखें कि बहुत सारी मामलात ऐसे हैं कि उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना पॉइंट स्कोरिंग अब भी कर रही हैं, और इस जो दहशतगर्दी की जंग है इसके अंदर ये एक नासूर है जो कि गुज़िश्ता 30 साल से जो है ना इसको परवान चढ़ाया गया है। ज़ियाउल्लाह साहब के ज़माने में फौज और पूरे वसाइल जो है सऊदी प्रॉक्सी के जरिए यहाँ पर झोंक दिए गए, जिसकी वजह से जो आज कैफियत है ये तनावर दरख बन गई है, और ये जो दहशतगर्दी है इसने पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लिया है, ये
जी
कैफियत है इस वक्त।
जी तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि खुद पाकिस्तान के जो शिया उलमा कौंसल है उनके जो रहनुमा है और खुद कराची विंग जो इसके शिया उलमा कौंसल की, उसने कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ये जो डॉक्टरों का या पिंडी में जो सानिया हुआ है ये शिया नस्ल कुशी का ही तसलसल है, तो इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे?
देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक तसलसुल के साथ जो एक तबके फिक्र को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और इसमें बिला तख्सीस अहले सुन्नत और जो उसके अंदर भी आपने देखा कि जो बरेलवी हजरात हैं उनके ऊपर भी ये धमाके किए गए, लाहौर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।
जी हाँ,
ये है कि जो भी तबकात जो है ना जो रसूल अकरम की जात को और वो मानते हैं, तो ये तकफीरी टोला है जो कि उनके खिलाफ बरसरे पैकार है, और वो इन तमाम तबका हाय जो फिक्र हैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं, और ये उनका एक नासमझी है या मदारिस के जरिए से जो उनको आया गया है बताया।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। चलते हैं एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया, सीरत अब्बास साहब। अभी आपने मदरसों का जिक्र किया सीरत अब्बास साहब, और इससे पहले जब पेशावर में जो सानिया उसके बाद वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने जो रिपोर्ट पेश की पार्लियामेंट में, और आवाम के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि 10% मदरसे ऐसे हैं जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रवाज दे रहे हैं मुल्क में। अगर 30,000 मदरसे हैं और 10% निकाला जाए तो तकरीबन 3,000 मदरसे बनते हैं, और 3,000 मदरसे कोई छोटी तादाद नहीं है। तो इन मदरसों को इतनी बड़ी मकदार में फंड कहाँ से मिलता है, क्या ये हुकूमत को नहीं मालूम? अगरचे हुकूमत ने वजारत खजाना और स्टेट बैंक को भी हदायत जारी की हैं कि फंडिंग पर नजर की जाए जो पैसे आते हैं दूसरे मुल्कों से, तो क्या मतलब ये है कि अब इस तरह की फंडिंग पर रोक लग सकेगी आपके ख्याल में?
जी, मैं अर्ज करूं कि ये तो बात किसी से अब ढकी छुपी नहीं है कि किसी भी निजाम को चलाने के लिए एक फंड रिक्वायर्ड होता है, और ये फंड जहां से भी आ रहा है, जो भी तीसरी ताकत ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या हुकूमत को इस बारे में पता नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इस बारे में पता नहीं होगा, और दीगर जितने भी चैनल्स हैं वहां पे रिपोर्ट्स आई हैं और मुख्तलिफ शोज के अंदर इस इशू को रेस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक तीसरी ताकत पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे इस आइडियोलॉजी को, एक रेडिकलाइजेशन को, तालिबानाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी मुल्क के लिए खतरा भी है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम फिर एक बात कहेंगे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पे रोक टोक लगाई जाए। हम, जाहिर सी बात है कि हम एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी हवाले से जो हम बात करना चाहेंगे तो हम अवाम के हवाले से जितनी बात कर सकते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस चीज़ को रोके, इस चीज़ के ऊपर बैन लगाए। अभी आपने चौधरी निसार की बात करी, आज ही एक मैं शो सुन रहा था, उसमें बताया गया कि जिस तरह से चौधरी निसार साहब ने माजी में जो भी तालिबान कमांडर, उनको बाकायदा उनको प्रेस किया गया, उनको उनकी उनको शहीद कर, जिस कौम जिस जिस मुल्क में ऐसे शरपसंद अनासर जो जो इंसानी दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको अगर प्रेस किया जाए, और मैं तो यूं कहूंगा कि इन्हें इन्हें मौकफ देने के लिए मीडिया पे क्यों बुलाया जाता है, इनको प्रमोट क्यों किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे मीडिया को भी देखना होगा कि ऐसे हकायक सामने लेके आए और ट्रांसपेरेंसी हो और गवर्नमेंट ये सवाल का जवाब दे, क्या उनको पता है, और अगर पता है तो इस चीज पे रोक टोक क्यों नहीं लग रही है। जी
सीरत अब्बास साहब, आप जैसे लोगों की कमी या तादाद कम नहीं है पाकिस्तान में, जो ये बात कहते हैं कि एक तीसरी कुव्वत है जो अपने नज़रियात पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए फंडिंग करती है मदरसों की और इंतहा पसंद अनासिर की, तो क्या अब पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, जो ज़राए इब्लाग हैं, जो हुक्काम हैं, जो बड़ी बड़ी जमातें और तंजीमें हैं, उनमें ये जरूरत नहीं हुई कि उस तीसरी कुव्वत का नाम लें और उस तीसरी कुव्वत को लगाम दें?
मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जाहिर सी बात है कि ये बड़ा एक करेज का काम है कि आप तीसरी कुव्वत की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिस तरह से एक जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, एक तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में शहरियों का रहना मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। एक जमाना था जब हम लोग रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टेररिज्म है, क्योंकि जब इंसानी जान महफूज नहीं है तो हम इन तीन चीजों से इस्तेफादा नहीं उठा सकते। तो पाकिस्तान में लोग बाशऊर हैं, लोगों को पता है, में मीडिया को भी न्यूट्रल रोल प्ले करना होगा, हकायक सामने लाने होंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे इदारे, हमारे मीडिया उनका नाम लेने से डरते क्यों हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में आके वो हमारे ही बच्चों को मारे, हमारे ही जवानों को मारे। बात तो अब पहले एशिया की नहीं थी, अब तो बात यह है कि जो भी मसलक, चूंकि जिस तरह से ये तालिबान और जिस तरह से बदनाम जमाना दाइश जिस तरह से ये उठे हैं और जिस तरह से ये अपना खुद साख्ता शरीयत जिसका इस्लाम से कोसों मील कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह से वो राइज करना चाहते हैं, लोग साहिब अकल हैं, लोग शऊर रखते हैं कि इसका इस्लाम, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वही बात है कि जब तक आवाम को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जब तक आवाम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आवाम अपनी आवाज कैसे रेज करे? और जहां तक मैंने इदारों की बात करी है, जहां तक मैंने अपने मीडिया की बात करी है, मेरे ख्याल से ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है और अब ये चीज ओपनली ये चीज अनाउंस करनी चाहिए। अब भी अगर हमने इस चीज को नहीं किया तो मेरे ख्याल से अब दूसरा वक्त अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में जहां पे खून की कीमत इतनी सस्ती हो गई हो, जहां पे जानी जाने महफूज ना हो, उस जगह पे मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ढक छुप के बात करनी चाहिए। अब सारी चीजें हकायक सामने लेके आना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है
जी, बहुत
और
शुक्रिया
इसके पीछे कौन से अनासिर हैं जो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं।
जी, बहुत शुक्रिया नाजी। हमारी गुफ्तगू जारी है हमारे मेहमानों से, मगर यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर नाजिन आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा फौजिया शाह साहबा। मोहतरमा, जो ये सूरत हाल है दहशत गर्दाना वाकयात की और दहशत गर्दों की सरगर्मियों की, तो जाहिर है कि पहले भी ये आवाज उठती रही है और अब इस आवाज में और शिद्दत आ गई है कि फौज को चाहिए कि वो सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद न रहे बल्कि चारों सूबों के शहरी इलाकों में आए और दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी हाथों से ऑपरेशन करे। कितना बजा है ये मुतालबा?
देखिए, ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप फौज को शहरों में इन्वॉल्व करते हैं तो मैं नहीं समझती कि ये बेहतर तौर पे किसी तरह भी आपका कोई नतीजा खैर साबित हो सकता है। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जब ये ज़र्बे असर शुरू हुआ था, जब हमने ये एक जंग का आगाज किया, तो उस वक्त हमने उसको कितना संजीदा लिया और अभी जो वाकयात एकदम ये शुरू हो रहे हैं, क्योंकि रिटेलिएट होना था, ये हमें पता था कि जब जंग का आप आगाज करेंगे या ऑपरेशन करेंगे तो रिटेलिएट करेगी। अब वो रिटेलिएट होना था लेकिन हमने उसको संजीदा नहीं लिया, उसने गवर्नमेंट ने भी नहीं संजीदा लिया और मैं ये समझती हूँ कि दीगर जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर आपको मालूम है कि उस वक्त एक ऐसी सियासी जमात जो है वो मुस्तकिल जो है सड़कों पर रही और सारी तवज्जो हमने उस पर दे दी, ज़र्बे असब को नहीं दी, तो उस पर हमने अपना वो जो दुश्मन था उसको हमने मजबूत किया और आज हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी ताकत के साथ हमारे पे हमला कर रहा है। ना सिर्फ उसने स्कूल को किया है, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, अब जो आपने पिंडी की बात की है शायद आप लोग नहीं जानते, वो शहर के अंदर एक बहुत छोटी गलियों में इमाम बारगाह है और क्योंकि मेरे वो बहुत अजीज हैं जिनका इंतकाल भी हुआ है, कल भी एक हमारे बहुत अजीज हैं उनका इंतकाल हो गया उसी में, क्योंकि मेरा भी वहां घर है, उसके बिल्कुल करीब घर है, तो वो एक ऐसी जगह पे उसने हमला किया है कि जो तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह शहर के अंदर गलियों में वो चले जाएंगे। मकसद मेरा ये कहने का ये है कि वो अब मुकम्मल तौर पर एक ज्यादा तैयार हो चुके हैं, वो अपनी ये जंग के लिए पूरी कुव्वत के साथ तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसके पेशबंदी जो है वो मुझे उस तरह दिखाई नहीं देती। मतलब हम ये जरूर है कह देते हैं कि ठीक है, हमने फौजी अदालतें बना दी, हमने फौरी इंसाफ के लिए बात कर दी, या हम ये कहते हैं कि शहरों के इंतजाम जो है वो अगर आर्मी के हवाले कर दें, लेकिन ये काफी नहीं है। इस वक्त जो जरूरत है वो मुकम्मल तौर पे अवाम में वो शोर देने की है कि ये जो लोग हैं ये कौन है। अभी तक वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक वो जो है वो उसको जाहिरा के कलमा पढ़ रहे हैं, अभी तक वो इस तरह के दीनी जो चेहरों में उन्होंने अपने अपने छुपाया हुआ है। और ऑपरेशन की जहां तक हम बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि क्रॉस दी बोर्ड हो, तो मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे तो बहुत करीब जो बहुत बड़े बड़े नाम है उनकी सरबराई में ये दहशत गर्दी के जो इदारे हैं मदारिस हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। हम किसी तरह भी जियाउल हक का वो दौर नहीं भूल सकते कि जिसमें मनज़म तौर पे इस्लामाबाद शहर आबाद होते हुए हर कोने पे एक मस्जिद जो है उस फिका की बना दी कि जिसने जो चाहे वो शिया या सुन्नी उनको बर्दाश्त नहीं करते, या जिस तरह भी आपके एक कॉल जिनसे आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ की नाम आता है तो वहाँ वो उनके खिलाफ जो है वो एक सफारा हो जाते हैं या अपनी एक सोच देना चाहते हैं, तो हम तो अभी तक उनको नहीं कर सके। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उनको समझ नहीं सके। आप अभी थोड़ी देर पहले मदारिस की बात कर रहे थे, अब मदारिस का जो सिलसिला है उसमें हैरत अंगेज बात है कि इस्लामाबाद में जगह जगह जो है वो इस किस्म की महफिलें कह लीजिए या मजालिस कह लीजिए वो मनक्कद होती हैं कि जिसमें एक ही तरबियत दी जाती है, लेकिन उसको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उन तक नहीं पहुंच सके और हर गली हर मोहल्ले में ये चीज हो रही है। मकसद कहने का ये है कि ये एक इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत हो, ओपोजिशन हो, फौज हो, उसके साथ साथ सबसे बड़ा किरदार आवाम का भी है। अवाम जब ये बिल्कुल वाजे तौर पे ये समझ लेंगे कि ये इस्लाम की वो नाम नहीं ले रहे, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमने पूरी दुनिया में इस्लाम का जो है एक ऐसा एक उसका
मोहतरमा, क्या आप नहीं समझिए कि पाकिस्तान के जो है वो बेशतर अवाम समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द इनका इस्लाम या दीन या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं?
देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अभी तक हम ये मैसेज नहीं दे सके। एक बड़ा तबका जो है वो जरूर समझता है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मदारिस की जो तरबियत लेके आगे आ रहे हैं वो एक उसमें फिजा में इजाफा हो रहा है। अभी ये चंद दिन से हम ये देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वाके के बाद कि उसमें थोड़ी सी हमें कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, लेकिन मजमूई तौर पे जब हम ये देखते हैं तो वो उनकी फिर एक मरतबा मुझे वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। मैं ये हुकूमत के तमाम इकदाम के बावजूद जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो फिर एक्टिव हो रहे हैं। वो किस शक्ल में एक्टिव हो रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वही जो एक सोशल मीडिया पे एक्टिविटी दिखाई देती है, इसी तरह हमारे दूसरे जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनकी एक्टिविटी हमें दिखाई फिर देने लग गई है जो पिछले चंद दिन से खत्म हो गई थी। जरूरत जो ये है कि वो हमें एक हकीकी इस्लामी तालीमात जो है, मैं यहाँ ये कहूंगी कि हमारे जो मुफक्किरीन का हमारे इस्लामी जो आलमीन है या उल्मा है उनका मुझे किरदार बहुत ही महदूद दिखाई देता है। उन्होंने एक पिछले 10-12 साल में अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। वो हमें बहुत ज्यादा, मैं उसमें समझती हूँ कि हम लैग करते हैं। हमारी मसाजिद जो है, जो सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि एक सोशल ऐसी एक्टिविटी की जगह होनी चाहिए कि जहाँ लोगों को बेहतर तौर पे तरबियत दी जाए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ हमारा आज तक हम जुम्मे का खुतबा जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सके कि वो खुतबा जो है वो मोहब्बत को दर्स किस तरह देवे। ये जो मोहब्बत का दर्स है ये हमारी जरूरत हो चुकी है, उसको मसाजिद को इस्तेमाल करना जो है वो बुनियाद बन चुकी है। और दूसरी जानिब देखिए, मैं ये जरूर आपकी वसातत से, और वैसे भी मैं ये मुख्ती जगह पे कहती हूँ कि वो मदारिस के जो बच्चे हैं उनको हमने जो सोसाइटी से अलग कर दिया है, उनका हुलिया हमने बिगाड़ दिया है, उनको एक अजीब तरह के हुलिये में हम दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से ना उनके साथ खेलने देते हैं, ना उनके साथ किसी किस्म के मुकाबले की फिजा पैदा करते हैं। जब तक हम उनको सोशल सेक्टर में नहीं लेके आएंगे, लोगों से उनके इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ये हमारे मुल्क में इस तरह की जो बुराई है वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उनको हमने सोसाइटी से अलग कर दिया है। हमें उनको सोसाइटी में लाना है। मैंने इनको बार बार ये हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से मैंने कहा है कि आप उनको बैनुल जो मदारिस हैं या तालीमी इदारे हैं या स्कूल हैं, ये हमारे मुख्तलिफ बच्चों के जो तकरीरी मुकाबले होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं, उनके मदारिस के बच्चों को भी इस्तेमाल करें। उनको जब आप सोशल सेक्टर में लेके आएंगे, उनको लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, और उनका जरूरी नहीं है कि 4-5 साल का बच्चा आप उसका इस तरह हुलिया बना दें कि अजीब तरह की उसको टोपी पहना दें और सिर्फ उसको ये रख दें कि उसने किसी जगह जाके बस कुरान शरीफ पढ़ना है या सपारा पढ़ना है, ये नहीं है। उनको बच्चे के तौर पर बच्चे को बच्चे के तौर पर ही हमें दूसरी सोसाइटी में मिलाना पड़ेगा, लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन करना पड़ेगी, फिर उसमें जो है हम किसी तरह बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन इस जानेब अभी तक मुझे कोई इकदाम नजर नहीं आया। मीडिया पे हम जब देख रहे हैं तो मीडिया में मुझे जो है सबसे अभी तक वो लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने सोसाइटी का बेड़ा गर्क किया है। माजरत के साथ मैं अच्छा लफ्ज नहीं बोल रही, लेकिन बर्बाद उन्होंने हमारी सोसाइटी को किया। ऐसे आके उन्होंने इस किस्म के वहां अपने भाषण दिए हैं कि जैसे वो कोई इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, वो इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे, वो सोसाइटी में एक तफरीक पैदा कर रहे हैं। कभी हम शिया को लेकर बैठ जाते हैं, कभी हम वहाबी को लेकर बैठ, कभी मरजई लेके बैठ जाते हैं, कभी क्रिश्चियन लेके बैठ जाते हैं, कभी हिंदू लेके बैठते हैं। हमने तो इंसान के तौर पर दर्श ही नहीं दिया। हमने जरूरत इस वक्त ये है कि इन चीजों से हमें निकलना होगा। हमें शिया सुन्नी वहाबी सुन्नी जो भी एक नाम मुख्तलिफ मजाहिब है अकायद है उससे निकल के हमें कौम के तौर पे काम करना होगा, और काम के लिए मैं ये समझती हूँ कि हमें मदारिस को सबसे पहले रजू करना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा आपने
मैं यहाँ पर एक अपनी बात कहना चाहूंगी मोहतरमा के यकीनन मदारिस जो है वो बुनियादी उनका जो बुनियादी फलसफा है वो अमन इंसानियत मोहब्बत भाईचारे और तालीमात इलाही और तालीमात नबवी का दर्स देना है। और जाहिर है कि इलाही और तालीमात नबवी यही है कि आपस में आमन भाईचारा मोहब्बत उल्फत और समाज की जो है वो क्या कहते हैं देख रेख, यही सबसे बड़ी तालीम है। तो मैं तो समझता हूँ कि मदारिस जो है एक मुकद्दस जगह का नाम है, लेकिन शायद कि मदरसे को जिस तरह से इस्लाम को इस्लाम के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, इसी तरीके से मदारिस को भी मदरसों के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए, इसमें भी मैं एक थोड़ी सी तकसीर जरूर करूंगी। तमाम मदारिस को हम इसका नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्तलिफ मदारिस हमने देखा है कि जहाँ एक बेहतर तौर पे तालीम भी दी जा रही है, वहाँ फिक्का की तालीम दी जा रही है,
यकीनन
वहाँ इस्लाम की जो मुख्तलिफ उसकी जो पहलू है उस पे उनको तालीम दी जा रही है, कुरान की तरबियत दी जा रही है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक अहले हदीस फिक्का से खास तौर पर ताल्लुक रखने वाले मदारिस हैं, उसमें सिर्फ एक जहाद के नाम पर एक तरबियत दी जाती है जिसमें नफरत पैदा की जाती है मुख्तलिफ सेक्ट के हवाले से, जिसमें नफरत पैदा की जाती है मुख्तलिफ मजाहिब के हवाले से। बल्कि मैं अगर इसका ये देखा जाए तो जाहिर है ये बड़े सर्वे करने की जरूरत है। मदरसा एक जाहिर है कि दर्स की जो दर्सगाह है वो एक बड़ी मुकद्दस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मदरसे के जो बच्चे हैं उनको सोसाइटी से जो अलग कर दिया जाता है, उनको सिर्फ एक दीनी तालीम तक वो महदूद करते हुए दूसरे एक सोशल जो कॉन्टेक्ट है उससे अलहदा कर दिया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात बन रही है। जरूरत इस चीज की है कि वो मदारिस को मेन फील्ड में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन बच्चों को दूसरे बच्चों के
जी
साथ
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा मोहतरमा जी,
जी
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा। चलते हैं एक बार फिर कराची, जहाँ पर मसूद जैदी साहब है। मसूद जैदी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखें कि कल ही की बात है, कल रात में लौरालाई तहसील में FC चेक पोस्ट पर हमला किया गया, यानी एक बार फिर फौज को निशाना बनाया गया। फौज जो ज़र्ब आज में मसरूफ है और जिसने फौजी अदालतों का क्याम जो है वो किया है, यानी उसकी निगरानी में, और दहशतगर्दों का ट्रायल वहां पर होगा, तो क्या फौज को कोई पैगाम देना चाहते हैं दहशतगर्द अनासिर?
बेशक दहशत गर्दों की जो असल जंग है वो तो वो फौज के साथ ही कर रहे हैं, और क्योंकि फौज जो है वो उनके खिलाफ बरतरे पैकार हो गई है ज़र्ब अर्ज़ के बाद, और उसने एक
नहीं दहशत गर्द तो आप देखें गुज़िश्ता 20-30 साल से आवाम का खून बहा रहे हैं, फौज से तो अभी उनका मुकाबला हुआ है।
जी यकीनी तौर पे, क्योंकि उनको एक तो जमाने में तो सरपरस्ती के साथ खुली छूट मिली ना, इस वजह से वो जो है ना वो अब ये समझते हैं कि अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि अब जिस तरीके से उनका घेराव हो रहा है और तमाम कौम जो है वो खास तौर पे जो पिशावर का सानिया हुआ है उसके बाद इस तरह जिस तरह एक पेज पर आई कि उनके जो सिंपथाइजर्स हैं जो उनके हमनवा हैं वो भी उनको डिफेंड करते हुए अब घबरा रहे हैं, और उनकी भी आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पे मान पड़ी है, गो के उन्होंने टाइम जो है ना वो उस तरीके से गेन करके और फौज को भी थोड़ा सा एंगेज किया और उसको टाइम को जो है ना काफ़ी हद तक बर्बाद किया। अगर बरवक्त इकदाम होते तो जिस तरीके से आप इस्लामाबाद की नाक के नीचे एक मस्जिद से जिस तरीके से जो सूरत हाल पेश आ रही है उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कैफियत यह है कि जो सिंपथाइजर्स हैं वो आज भी जो है ना वो उनको किसी ना किसी शक्ल में जो है वो दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि जनाब यार ये जो मदरसे हैं और ये जो है ये जो है वो एक तरफ से कॉर्नर कर देते हैं कि जनाब यार ये जो करने वाले हैं वो मुसलमान ही नहीं है। भाई मुसलमान नहीं है तो फिर आप उनको जितनी भी ये आपके तंजीमें हैं खास तौर पे JUI है, जमात इस्लामी है, और उनके जितने सिंपथाइजर्स हैं और मीडिया पे बैठे हुए बहुत सारे उनके जो है हमनवा हैं वो उनको फिर डिफेंड क्यों करते हैं? अगर वो एक दुश्मन के तौर पर हैं तो फिर ठीक है, उनको एक दुश्मन के तौर पर ट्रीट फौज को कर देने दीजिए ताकि उसका जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस मुसीबत से और इस आलम इस्लाम भी इस मुसीबत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि आलम इस्लाम को भी अपने घेरे में लिया हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और यहाँ से जो ये जो जंग है ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि ये आगे भी जो है ना वो जा रही है, और फिर जिस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से इंटरनेशनल मामलों में भी यहाँ से लोग जो है ना एक्सपोर्ट हो रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, तो इसके लिए तो फौज जो है वो अपना किरदार अब बर वक्त अदा कर रही है और यकीनी तौर पर इसके अच्छे नतायज होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। और दूसरी बात ये कि जो जहनी और फिक्री जो इनकी तरबियत हुई है एक अरसे से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छूट के साथ जिस तरह मदारिस ने एक इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया और इसको एक मजहबी फरीजे के तौर पे इसको लिया गया है, तो उसमें पाकिस्तान में कायम बहुत सारे एक जहालत और गुर्बत का भी इसमें बहुत बड़ा दखल है, जिसको कि इन तालीमों ने जो है ना वो लोगों को उसकी तरफ मायल किया है। और फिक्री बहुत बड़ी तरबियत की ज़रूरत है, मतलब फौजी एक्शन की ज़रूरत है, इसके साथ साथ फिक्री जो तरबियत है उसकी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये जो तमाम है ये जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों के ऊपर, हकूमत के ऊपर, कि वो बर वक्त जो है ना अपने इकदाम को तेज़ करे, लेकिन जिस तरह से अमल होना चाहिए वो अमल अभी फिलवक्त नज़र नहीं आ रहा।
बहुत शुक्रिया सीरत अब्बास साहब, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं जहाँ पर मौजूद हैं वो स्काइप के जरिए। सीरत अब्बास साहब मेरी आवाज़ सुने आप?
जी
जी आप देखें कि अब तक जो ये सानह पेशावर रुनुमा, उसके बाद से जो हुकूमत ने पाबंदियां ख़त्म की थी सज़ाए मौत पर अमल दरामद की, उसके बाद से 9 या 10 या 11 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। आज भी कराची जेल में एक बहराम खान नामी एक शख्स को, एक मुजरिम को फांसी दी गई जो किसी वकील के कत्ल में मुलव्वस था। लेकिन देखा यह गया है कि अब तक जो फांसियां दी गई हैं वो या तो फौज पर हमले या फौजियों पर हमले या रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमले में, इस तरह के जो वाकयात थे उसमें मुलव्वस लोगों को फांसी दी गई। रावलपिंडी में चंद साल कबल शिया मुसलमानों पर हमला हुआ था, उसमें मुतअद्दिद अफराद मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके भी 4-5 मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों उनकी सज़ाए मौत को एक तरह से मुलतवी कर दिया है या कलअदम करार दे दिया है। तो अगर इस तरह से यानी दोहरा मेयार रहा सजाए मौत की यानी फांसियों की सजा पर अमल दरामद के ताल्लुक से, तो क्या दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकेगा? कि अगर फौज या वकील का कातिल है तो उसको सजा दी जाए फांसी की, और अगर आम शहरियों का है तो उसको जो है वो किसी सूरत से उसको शेल्टर दे दिया जाए, उसको जो है बचा लिया जाए।
जी, ये जो जिस दोहरे रवैये की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारी बदकिस्मती रही है पिछले चंद सालों से, और बल्कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है उस वक्त तो इतनी चीज ये आम नहीं थी। लेकिन एकदम से ये जो तकफीरियत की और वहाबियत की जो हवा चली है, और जिसमें मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि एक मखसूस फिक्र की को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ अकायद की बुनियाद पे, कि जो हमारे अकायद हैं उस पर हमको टारगेट किया जा रहा है। यही सानिया पिशावर नहीं, मैं आपको माजी के इंसिडेंट्स में ले जाऊं जिसमें सानिया मस्तूंग है, सानिया कोयटा है, सानिया जिसमें अलमदार रोड, करानी रोड और जो दीगर अब्बास टाउन के सानियात हुए जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए, और उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने सबने दुनिया में देखा कि जिस तरह से वावेला हुआ मीडिया के ऊपर, उस वक्त भी जो उनके मुजरिम थे जिस तरह से कलदम तंजीमों के जो जिस तरह से जो उनके लीडरान हैं उन्होंने खुद कबूला है कोर्ट के अंदर कि हमने 100 कत्ल किए हैं। जब जिस मुल्क में इस तरह से रवैया अख्तियार किया जाए, जिस मुल्क की कोर्ट सिस्टम इतना वीक हो कि एक मुजरिम खुद खड़े होकर एतराफ कर रहा हो इस बात का कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और ये बात सरासर ये सामने आती है कि ये एक दोहरा रवैया है, ये एक बायस्ड बायस्ड वे में हमको समझ लें कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, चाहे वो हमारे अकायद के बेस पे हो, चाहे वो हमको हमारे अकायद के बेस पे हमको अलग करें या हमको किसी तरह के भी फतवे लगाएं। लेकिन जिन अफराद की आप बात कर रहे हैं जिन हैं मुशरफ केस में या दीगर जो केसेस में, ये मैं इसको यूं कहूंगा कि ना कुछ होना होने से कुछ होना बेहतर है, ताकि जो इस वक्त फांसी के तख्ते पर लटक रहे हैं वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। और मैं यही दुआ करूंगा और अपील करूंगा पाकिस्तान की अदलिया से और जो भी इदारे हैं जो इसमें अपना किरदार अदा, वो जो दीगर सानेहात में जो इन्वॉल्व कातिल हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि हैं जिनके प्यारे गए हैं उनको भी सुकून मैसर हो
बहुत
सके।
शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया
पाकिस्तान
जी। नाज़रीन, हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम अपने तीनों मोज़ज़ मेहमानों के शुक्रगुजार हैं और उनसे इजाज़त चाहते हैं, और नाज़रीन आपसे भी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो तीनों मेहमानों की निकल कर आई वो ये कि इसके लिए पूरी कौम को बेदार होना पड़ेगा, उनके अंदर शऊर आगही और बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में उलमा अकाबरीन अमायदीन और मुफक्रीन को आगे आना होगा। और जाहिर है कि हुकूमत का काम इंतज़ामी उमूर है, उसको संभालना, सिक्योरिटी इदारों और फौज का काम जो है वो सिक्योरिटी और अमन अमान की बरकरारी है, उनको इस मैदान में अपने फ़राइज़ पर अमल करना होगा। जाहिर है कि पूरी कौम जब मुतहद होगी हर एतबार से, कार्रवाई के एतबार से, फिक्री एतबार से, नज़रियाती एतबार से, शऊर और बेदारी और आगही पैदा करने के एतबार से, तो उसी सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दहशतगर्दों को जहाँ से फंडिंग मिल रही है और जहाँ से इनकी नज़रियाती तौर पर जिस तरह से इनको उभारा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, और इनकी जो ग़िज़ाएं फराहम की जा रही है नज़रियाती और अफकार की बुनियाद पर, उन ज़राए को सबसे पहले उनके रास्ते को काटना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे लिबास दीजिए, दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।